नारायण नारायण
तूने बहुत छोटा बनाया और गुरु जी हो गए ब्रह्म। ब्रह्म की उपासना ही गुरु की उपासना कि हमारे गुरु जी ब्रह्म के मां लीन हो गए, ब्रह्म रूप हो गए, साक्षात ब्रह्म हो गए। ये तो ठीक है क्योंकि एक प्रकार से ब्रह्म है वो, एक प्रकार से अपने अपने उच्च कोटि का वो उनका गुरु है। तो के भीतर में जो आत्मा है और वो ब्रह्म के मां विलीन हो जावे, ब्रह्मवित ब्रह्म ये भवती, ब्रह्मविता ब्रह्म हो जाता है। भक्ति के सिद्धांत से थी ये साइज मुक्ति है। तो वो एक प्रकार से परमात्मा में मिल गया, परमात्मा ही हो गया। अब परमात्मा की भक्ति जो लोग करते हैं जी की उसकी भक्ति, ये बात तो ठीक है कि दुनिया के लोग जो परमात्मा की भक्ति करते हैं सो उसकी है, कि उस परमात्मा की दो नहीं, किंतु एक प्रकार से बोलो कि भगवान श्री राम श्री कृष्ण हुए ना, उनकी मंदिरों के वहां पूजा करते हैं ना लोग, अरे उनकी बराबरी है तुम्हारे गुरु की। भगवान राम और श्री कृष्ण का तो नाम उच्चारण करने से मुक्ति हो जाती है, क्या तेरे गुरु का नाम उच्चारण करने से मुक्ति हो जाएगी? शास्त्र उसके लिए गारंटी देते हैं, महापुरुष गारंटी देते हैं, ऋषि लोग गारंटी देते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मुक्ति हो जाती है, राम नाम के उच्चारण करने से मुक्ति हो जाती है, भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने से मुक्ति हो जाती है, भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से मुक्ति हो जाती है, क्या तेरे गुरु का नाम उच्चारण करने से भी मुक्ति हो जाती है? और वे जो भगवान श्री राम श्री कृष्ण है उनका पांच भौतिक शरीर थोड़ा ही था, वे तो उनका दिव्य स्वरूप था, वे कोई मरे थोड़े ही। तेरा गुरु जैसे मर गया, लोग शमशाना में जलाया और उसकी खाक में खाक मिल गई, या जो मिट्टी है इस मिट्टी के सामने तुम्हारे गुरु की खाक है? तो भगवान राम और श्री कृष्ण बोले, भगवान राम और श्री कृष्ण जो है उनका विषय देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी परम धाम को सिधारे तो अपने इसी शरीर से जो दुनिया में शरीर देखने में आ रहा था लोगों के, वो शरीर विष्णु भगवान के शरीर के मां प्रवेश कर गया। देखो वाल्मीकि रामायण, ऐसा नहीं कि जैसे लोग मरे ऐसे राम भी मर गए और ले जाकर उसको शमशान में जलाया, तंगड़े आदमी जाकर, ऐसे राम नहीं मरे। और भगवान कृष्ण भागवत को देखो, भगवान कृष्ण जी परम धाम में पधारे तो इसी शरीर से परम धाम को पधार दो, ये नहीं कि उनका शरीर जो है तो यहाँ एक प्रकार से रहा और उसको लेकर के लोगों ने फूंकिया और जलाया हो। क्यों इसी शरीर से गए कि भावी में जो भगवान के भक्त होंगे वे भगवान की आराधना करेंगे और भगवान को बुलाएंगे, तो वे भगवान श्री कृष्ण इसी शरीर से वहां प्रकट हो। जब जला दोगे तो क्या प्रकट होगा? काल जो मेरा शरीर है मैं मरू, मुझको लोग जला दे वे, और फिर कोई एक प्रकार से कोई कहे कि भी उस देवियाल को बुलाओ, अरे मूर्ख उसको तो शमशान में जला दिया, खा गोई उसको क्या बुलाओ, वो क्या होगा, वो ग्रहण की चीज है। तो भागवत जो कह रही है भगवान कृष्ण के विषय में वो ठीक है। अब बोले दूसरी जगह तो ऐसा भी आता है कि उसके ब्याज का बाण लगा जी तो ठीक है लगया, किंतु भगवान उसी शरीर से अपने चले गए, गायब हो गए, शरीर यहाँ गया नहीं। मतलब कई कोई ग्रंथ आता है कि शरीर यहाँ रहा और उनकी जो धर्मपत्नियां और है वे साथ में लेकर के सती हुई। अरे बोले उनकी बात मानोगे कि भागवत की बात मानोगे? जो भागवत में लिखा है वो ठीक, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा वो ठीक, दूसरी रामायणों में कहीं लिख दिया गलत। तो वाल्मीकि ऋषि ने तो पहले से ही रामायण बढ़ा दी भगवान के मौजूदगी के बीच के, वहां भावी की बात भी पहला बना दी। भगवान जब प्रकट नहीं हुए थे उसके पहला ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी और उसी के अनुसार सारी लीला हुई। तो वे त्रिकालज्ञ थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो हम लोगों का शरीर पांच भौतिक है और भगवान का जो शरीर है तो वो दिव्य है, चेतन है, जड़ नहीं है। हाँ, एक जड़ की भी खोड़ी ऊपर रखते हैं अपने, इसलिए कि जो अनाधिकारी है, जो पामर जो पुरुष है, मूड जो है, उनको अपना स्वरूप रखोने के वास्ते ऐसा भी करते हैं। नाहंग प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत हो और मूढ़ो यंग ना भी जाना थी लोको मामद्रम, मैं सबको दिखता नहीं क्यों कि मैं योग माया का पर्दा अपने पर डाल लेता हूं। कौन सी योग माया? जो समझो कि जसोदा के यहाँ अवतार लिया था और उस योग माया को ला करके और बलदेव जी ने अपने योग माया को वसुदेव जी ने ला करके अरे अपने जापे घर में सुला दिया और समझो कि आपने लड़का होया ऐसी आवाज करी और फिर कंस आकर के उस योग माया को शिला पर देख करके जान से मार डाला। अब योग माया को क्या मरे, उसका जो शरीर चाहे नष्ट कर दो। वो आकाश में जा कही योग माया ने कहा रे दुष्ट, मेरे मारने से तुम्हारी मृत्यु नहीं बचेगी, तेरे मारने वाला तो गोकुल गया, अब तू साफ दान हो, वो तो खबर देगी बाजो। वो तो एक शरीर हो योग माया को, अरे योग माया एक शक्ति है भगवान, उस शक्ति को प्रकृति को समझो कि लेकर के भगवान आपने खोली रखते हैं जिसमें दूसरा उसको पहचान नहीं सकता। भगवान अपने पर पर्दा डाल लेते हैं कि जो अनाधिकारी है उनके सामने प्रकट नहीं होती। तो योग मास समाप्त तो मूढ़ो यंग ना भी जा रहा थी लोको माम, भगवान कहते मैं जो अज हूं, मैं जन्मता नहीं और अविनाशी हूं, मरता नहीं, ऐसा मैं अज और अविनाशी हूं, इसको मूढ़ों का समूह जानता नहीं। वह जानता है कि जन्मता और मरता है, तो उसके लिए मैं जन्मने मरने वाला सा बन जाता। वो पर्दा डाल करके उनको ऐसा ही दिखता है कि वो जलवा वो भरा, किंतु वास्तव ये बात नहीं। गीता कहती जगह जगह अजो भीषण नभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वर भीषण प्रकृति स्वाम अधिष्ठा संभवा में आत्म माया, अज हुआ, अविनाशी हुआ, सब भूतों का ईश्वर हुआ और अपने प्रकृति को अपने बस में करके की और अपने योग माया से थी मैं संसार के बीच के वहां प्रकट होता हूं और प्रकट होकर के फिर लीला करके के फिर वापिस चला जाता। तो भगवान जो प्रकट होते हैं और चले जाते हैं वे जन्मते मरते नहीं। और भी आपको ख्याल करना चाहिए ध्यान देकर के, गीता कहती, भागवत कहती, महाभारत में लिखा है। गीता क्या कहती है कि अर्जुन ने कहा कि महाराज आपका विश्व रूप दिखलाओ, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया अर्जुन को और दिखलाने के बाद वो अपना उपसंहार कर। अरे विश्वरूप एक प्रकार से पांच भौतिक माटी का होता तो बड़ी भारी लाश दोनों युद्ध के बीच में पड़ती, सब लोग देखते बोले देखो ये भगवान का भगवान की लाश, मर गए भगवान। तो भगवान कभी मरते नहीं, ये तो मूर्ख लोग कहते हैं। और भी देखो जब भगवान प्रथम प्रकट हुए वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए प्रकट हुए तो कैसे कि दिव्य रूप से चतुर्भुज रूप से थी, इस मनुष्य शरीर से नहीं दिव्य रूप से चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई और देख करके ये स्तुति करने लगी, पहचान गए कि साक्षात भगवान देव की वसुदेव जी स्तुति करने। बोले महाराज ऐसे रूप में आप रहोगे तो कंस हमारे को दुख देगा, तो ये रूप आपका उपसंहार कर साधारण रूप में हो जाओ, बालक के रूप में हो जाओ। भगवान ने कहा कि मैं ये रूप क्यों धारण किया मालूम है, इसलिए धारण किया है कि थाने यो मालूम हो जावे कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे यहाँ अवतार लिए, इस बात को जनाने के वास्ते मैंने ये रूप धारण किया, इस रूप में मैं प्रकट हुआ। अच्छा अब आप जो कहते हो वैसा ही बन जा, अब वो बन गए, अब वो चतुर्भुज कहाँ गया, अब वो कोई जेल खाने में रहा कहाँ गया, वो तो चेतन था वो जड़ नहीं था। इसी प्रकार से जगह जगह आप देखो, ब्रह्मा के जब वो हो गया था उस समय के बीच के मां भगवान ग्वाल बालों के रूप में बच्चों के रूप में आपके अनंत रूप धारण कर लिया, संघ रूप समझो कि अध्यारू। अब जब ब्रह्मा जी शरण आ गए तो भगवान ने क्या किया कि उन सब को समेट लिया, अपने तो संकल्प के थे ना समेट लिया। तो ये ब्रह्मा की धातु के होते ये समझो इस प्रपंच के होते तो समझो ये भी यहाँ रहते वे सब रूप, और वे भी एक प्रकार से लोग जल में मरे जो जलमते मरते और इस मट्टी के मां सामने। ब्रह्मा जी ने देख लिया कि तेरा बनाया हुआ माने तेरे जो बनाए हुए ग्वाल बाल और है ये सब तो गुफा में पड़े, और ये जो रचे हैं ये स्वयं भगवान अपने चिन्मय रूप से अनेक रूप धारण किए, ये साक्षात भगवान है। मेरी मूर्खता थी जो मैं इन्होंने बालक समझ करके और इनकी परीक्षा के लिए उतारू हो गया और ग्वाल बाल बच्चों को ले गए, तो उनको फिर ज्ञान हुआ। अब ये देखो कि वह ग्वाल बाल बच्चे जो ब्रह्मा की रचना में थे वे तो वहां मौजूद रहे, और फिर समझो समय अनुसार अपने मरते रहे, और भगवान ने तो क्षण में ही तो रचे और क्षण के मैं सब कहता हूं क्या, वो तो एक प्रकार से अपने भगवान आप ही थे, एक ओम भूषा में एक मैं भूत हूं संकल्प करने के साथ भूत हो गई तो वे चेतन। इसी प्रकार से थी हर एक जगह में आप विचार करके देखो, एक जगह नहीं जहां जहां भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया बस वहां उपसंहार कर लिया। ये नहीं कि ब्रह्मा के ये जड़ संसार में पांच भौतिक संसार में ब्रह्मा के प्रपंच के बीच के मां उनका शरीर समझो कि विराट स्वरूप जो है सो उसकी मट्टी इस मट्टी के मां कहीं शामिल हुई हो ऐसा कहीं भी आपको लिख नहीं। भगवान ने दुर्योधन की सभा में जाकर के समझो कि दुर्योधन को विराट रूप दिखलाया, अरे दूसरे तू क्या मुझको बांधना चाहता है सांकड़ों से, अरे तू क्या मुझको ये समझ लिया कि ये कृष्ण अकेला है, देख सारे पांडव मेरे भीतर के बीच में और सारे यादव मेरे में सारे देवता मेरे में सारी सेना मेरे में समझो अंगुष्ठ प्रमाण से उस भगवान के विश्व रूप के बीच में सारी संसार दिखने लगी, लोग मूर्छित होकर के गिर पड़े, जो अच्छे महापुरुष थे भक्त थे वे स्तुति करने लगे, उनको भगवान का दर्शन। इसी प्रकार से थी उत्तम के होंगे वहां भी भगवान और वो विश्व रूप भगवान का भगवान के शरीर में दिखाया गया और वहां ही बस करता हूं। तो इसे समझना चाहिए कि भगवान जो जन्म से मरते भगवान का स्वरूप दिव्य होता है चेतन होता है जड़ नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर शरीर का भेद है, हमारा शरीर तो जड़ है हमारे भीतर की आत्मा चेतन है, इस तरह से भगवान का जो असली जो दिव्य स्वरूप है वो शरीर भी चेतन है और भगवान भी चेतन, भगवान का धाम भी चेतन। तो ये बात आपको मैंने एक प्रकार से भगवान के विषय में बतलाई। अब आपको बतलाया जाता है महापुरुषों का रहस्य,
भगवान का जो भक्त है और वो अपने को भगवान के स्थान में बैठा करके नहीं पूजा। हनुमान जी को कहो कि भी तने राम बनाकर भी पूजा, तो साक्षात ईश्वर है हनुमान जी को हम राम का रूप देवे, भगवान राम का अरे उसकी पूजा करें, तो हनुमान जी आप पर नाराज। राम तो हमारा इष्ट देव है, मैं तो उनका सेवक हूँ, मैंने उस अपने स्वामी की जगह तुम बैठा सकते हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करें। तो दास कभी इस बात को बर्दाश्त करेगा? तो भगवान का सच्चा जो भक्त होगा वो भगवान की जगह अपने आप को कभी नहीं बिठावेगा। तो इस वास्ते ये ख्याल करना चाहिए कि ज्ञानी है या कोई ईश्वर का सच्चा भक्त, वो मरने के बाद के बीच के माँ लोग हमारी स्तुति करे, लोग हमारी पूजा करे, ये नहीं चाहते। मैं यदि भगवान का भक्त होऊंगा, मैं भगवान राम का भक्त होऊंगा, तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि भगवान के राम नाम का जप करो और भगवान राम का ध्यान करो, यही मैं कहूंगा। ये नहीं कि भी मेरे नाम को तो जप करो और मेरे ध्यान करो, सारो कल्याण हो जैसे। इस बात को भगवान कैसे बर्दाश्त करेंगे? और वो तो फिर भगवान के नाम और रूप को मिटना चाहता है। अपना नाम और रूप जो तुच्छ है, नाशवान, क्षणिक है, घृणित है, उसकी तो वो प्रतिष्ठा चाहता है, प्रचार चाहता है। और भगवान का जो स्वरूप है सो दिव्य, नाम है सो दिव्य, जिसके स्वरूप के ध्यान करने से मुक्ति हो जावे, जिसके नाम के जप करने से कल्याण हो जावे, भगवान का भक्त होकर के और उस भगवान की मर्यादा को, भगवान के नाम और रूप की उपासना को वो कैसे मिटावे? और देवी मिटाता है तो भक्त कहाँ? तो वो भगवान का भक्त नहीं। भगवान का भक्त तो यही शिक्षा देगा कि भी भगवान पूजने के योग्य है, उनका भजन करो, उनका ध्यान करो, ऐसा ही वो कहेगा। ये नहीं कि मेरे मरने के बाद के माँ जैसे थे राम की मूर्ति को पूजो हो, ऐसे मेरी भी मूर्ति को पूजो। अरे राम में कोई कमी है? भगवान राम से तुम्हारे में क्या दिखता है जो एक प्रकार से उसको पुराना समझ कर उस बात दे में तेरे को फिर पूजो? और दोनों को भी क्यों पूजो? तुम्हारे जैसे तो लाखों भक्त हो गए, समझा? उन्होंने क्या अपराध किया? जो वास्तु के बीच के माँ सच्चा भगवान का भक्त होगा, वो अपने मरने के बाद के बीच के माँ मेरी पूजा करी जावे, मेरी जीवनी का प्रचार किया जावे, मेरे नाम का प्रचार किया जावे, मेरे रूप का प्रचार किया जावे, कोई भी समझदार कोई भी भगवान का भक्त ऐसी इच्छा नहीं करे। और करता है तो वास्तव में वो भगवान का भक्त नहीं। यदि कहे वो तो नहीं करता, उनके अनुयायी करते हैं। अरे मूर्ख, उनके अनुयायी ऐसा क्यों करेंगे? अनुयायी तो वो है कि उनके सिद्धांत को माने। मेरा जो सिद्धांत है, मेरी जो मानता है, जिस प्रकार से जिससे मैं खुश हूँ उसके अनुसार कोई माने तो वो तो मेरा अनुयायी समझा जाएगा ना। और मेरे से विरुद्ध करे वो अनुयायी क्या है? वो अनुयायी नहीं। तो वो क्या करता है कि उसको नीचे गिराता। वास्तव में सच्चा महात्मा गिरता नहीं, किंतु वो तो अपनी तरफ से गिराने की चेष्टा कर रहा है। कैसे? कि भगवान इससे नाराज, वो इससे नाराज कि मुझको भगवान के स्थान में बैठा करके मेरा तुम अपमान कर रहे। वो कहता है कि मैं यदि भगवान से बढ़कर के होता तो भगवान की जो जीवनी, भगवान का श्री रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है कितना उज्जवल है, कितना शुद्ध है। कोई कोई भाई ने हमारे कहा भी आप बताओ तो आपकी जीवनी सो लिखे। अरे हमारी जो समझो कि सभी प्रकार की अवस्था हमारी हुई, हमने संसार के बीच के माँ समझो कि झूठ भी किया, कपट भी किया, चोरी भी किया, जितना जो पाप है वो भी हमने किया, वो तुम थोड़ा लिखोगे? तुम तो हमारी भली बात को लिखोगे। तो ये ऐसा हम यदि लिखावेंगे तो एक प्रकार से तुम्हारे को और अपने आप को धोखा हम दे रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे। दूसरी बात यह, आवश्यकता क्या है? आज यदि
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जो चरित्र है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का दिव्य जो स्वरूप है, भगवान रामचंद्र जी का जो पवित्र जो नाम, सुगम जो नाम, एक प्रकार से मुक्ति देने वाला जो नाम है, उससे बढ़कर यदि मेरा नाम होता या मेरा रूप होता या मेरे चरित्र होते तो मैं कहता, अरे एक प्रकार से भगवान के जो अपने आते नहीं तो सब पुराने हो गए, और ये मेरा नाम रूप और चरित्र जी का बढ़िया है, इससे लोगों का जल्दी कल्याण हो जाता है, क्योंकि मैं तो मौजूद हूँ। अरे वे तो कोई वक्त में मौजूद थे, एक प्रकार से वो पुराने हो गए, तो नया आविष्कार करके तुम ऐसा करो। ऐसा यदि मैं करने लगूं तो वहाँ भगवान एक प्रकार से यमराज को आर्डर देंगे कि इस दुष्ट को घोर नरक में डाल, समझा? और मेरा पतन होगा और उनका पतन होगा, झूठा मार्ग कल्पित मार्ग इसके अनुसार वे चलेंगे, हमारे कहने से चलेंगे, हमारी राह से चलेंगे तो हमारा भी पतन होगा। हमारी राह नहीं होकर के हम उसमें सहमत भी हो जाएंगे तो हमारा समझो कि पतन होगा और उनका भी पतन होगा, कि झूठा मारे। अब आप बतवाइए कि एक प्रकार से कोई भी एक बात को थोड़ा लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसको याद करके उसकी लीला को हमारा कल्याण हो सकता है? भगवान की लीला को याद करने से हमारा कल्याण हो सकता है? उनका गायन करने से हमारा कल्याण हो सकता है? हमारा जो चरित्र है वो तो कलंकित है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का जो सारा चरित्र एकदम शुद्ध और पवित्र है, उस शुद्ध पवित्र चरित्र को मलिया मेट करके के, और जो अपना गंदा चरित्र उसको यदि संसार के बीच के मान लोगों को धोखा देवे तो वो तो अन्याय करता है, वो तो जुल्म करता है। इसी प्रकार से ये हमारा शरीर रोज बदलता है, और समझो कि हार्ड मांस का है, और इसके माँ कितनी बीमारियां हो रही है, और जीता रहेगा तो भविष्य में इसकी बीमारियां और भी होती रहेगी। तो ये जो समझो कि एक रोग का घर जो शरीर है, और जिसके माँ मल और मूत्र भरा हुआ है, ऐसा जो एक भूत है, उसको एक प्रकार से कोई पूजे या मैं पूजाऊं तो कितनी मूर्खता की बात है। और भगवान राम के शरीर को छोड़कर जिनका दिव्य शरीर है, जिनका चेतन शरीर है, संसार के उद्धार के लिए जो प्रकट हुए, आप प्रत्यक्ष में देखो कहां तो एक प्रकार से ये मनुष्य का तुच्छ शरीर, और कहां भगवान राम। तो ऐसा जो संसार के बीच के वहां जो लोग करते हैं या करवाते हैं, या एक प्रकार से उनके अनुयायी लोग उनका ऐसा मत मान करके करते हैं, तो वे दोनों ही गलती के बीच के मां है। आज तो संसार में घर घर के मां जाकर के जगह जगह हरेक संस्था में जाकर के देखो कि जो आप जो है सो वे भगवान बने बैठे, और जय भगवान उनको आपने देखने के मां प्रत्यक्ष के मां पांच भौतिक शरीर लिया बैठे है, और समझो कि अपने वहां भगवान बनकर के अपने जय बुलाते हैं, पूजाते हैं जगह जगह। हर कोई एक प्रकार से अपने योगी राज बना बैठे है और पूजा रहे, कोई एक प्रकार से थी अपने महापुरुष कि मैं अवतार हूँ, मैं भगवान का अवतार, कोई एक प्रकार से अधिकारी पुरुष बना बैठे है। किंतु यदि उसको जवाब सवाल किया जा पूछा जावे तो बस खत्म मामला, फिर उसका कोई जवाब नहीं। जवाब क्या हो, बात तो सच्ची ठहरेगी ना, झूठी बात ठहरी से। तो ये महापुरुषों का तत्व मैंने बताया कि महापुरुष जो होते हैं उनमें इस प्रकार के दोष नहीं घटते। ये तो जो ये समझते हैं कि भगवान का जो नाम और रूप है वो कायम रहे, उनके चरित्र कायम रहे, और उनके ऊपर दूसरा चरित्र का पर्दा नहीं घेरना, दूसरे नाम रूप और चरित्र का पर्दा जो घेरना है वो तो भगवान के नाम रूप को रखोना। इसी प्रकार से समझो कि ज्ञानी महात्मा भी ऐसा नहीं करते और भक्त भी ऐसा नहीं करते। वो भक्त क्या हुआ, वो तो अपने आप का भक्त है, भगवान का भक्त कहाँ। भगवान का भक्त होगा तो भगवान को पूजावेगा, और अपना भक्त होगा तो अपने को पूजावे। और ब्रह्म को जो प्राप्त हो जाता है वो तो फिर वो ही रास्ता बतलावेगा, ब्रह्म का रास्ता ही बतलावेगा उसका तो शरीर है सो, वो गैर रास्ता नहीं बतलावेगा कि भी मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तुम मेरी ऐसे पूजा करो। और उनके प्रभाव की जो बात है वो तो हमारे समझ में भी नहीं आती। जो भगवान का प्रभाव है और भगवान वहां से किसी महापुरुष को भेजते हैं अपना पावर देकर के, तो किसी को तो पूरा पावर देते हैं और किसी को आवश्यकता के अनुसार पावर देते हैं। जैसे कहीं हमारे विदेश के वहां एक जाजात है और हम किसी को पावर देकर के भेज दे, वो हमारी जायदाद को बेच सकते, वो हमारा प्रतिनिधि बनकर के हमारा सब काम कर सकता है जिसको हम पावर दे दें। एक देशी मुख्तार नामा या सर्वदेशी मुख्तार, पूरा मुख्तार नाम दे दे तो वो हमारे को भी बेच सकते। तो भगवान वहां से जो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं वो आकर के जो कुछ कर जाता है भगवान को उसको सब मंजूर। भगवान को वो खड़ा करके बेच जावे तो बेच सके। जैसे गुमास था एक प्रकार से मालिक को बेच देता है, समझा, ऐसे ही वो भगवान को बेच सके। बेचना ही है कि एक प्रकार से जो भगवान को बुला करके दर्शन करा दे तो भगवान उसके अधीन हो गए ना। और ऐसे भक्तों के भगवान अधीन होकर के रहते हैं, किंतु ऐसा भक्त इस जमाने के बीच के वहां न तो हमने यहां कहीं सुना न कोई देखा। पुस्तकों में हमने देखा और पुस्तकों के बीच के वहां समझो कि हम उसके विश्वास पर ऐसा मानते हैं कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका प्रभाव अपरिमित होता है, उनका प्रभाव अलौकिक होता है। उनके नेत्रों की दृष्टि जितनी दूर फैलती है समझो कि उनके भीतर के का जो भाव है वो संसार में फैलता है। वो जिसको देख लेता है तो उस पर भी कुछ असर होता है। वो जहां बैठा रहता है तो उसके प्रभाव से थी दूसरे आदमी पाप नहीं करते। महाराज जिस उस जाति के पुरुष नहीं थे, उसे कुछ निम्न श्रेणी के थे, महात्मा तो जरूर थे किंतु भगवान के भेजे हुए महापुरुष नहीं थे। तो भी युधिष्ठिर का प्रभाव देखो, विराट नगर के मां बैठे हैं तो विराट नगर के बीच के मां एक प्रकार से धर्म की वृद्धि हो रही है, सत्य की वृद्धि हो रही है, धान की वृद्धि हो रही है, गवां की वृद्धि हो रही है, धन की वृद्धि, इन चीजों की वृद्धि हो रही है। और वहां अकाल नहीं पड़ सकता, वहां महामारी नहीं आ सकती, वहां कोई देवी कोप नहीं हो सकता, वहां बाढ़ नहीं आ सकती, वहां कोई भूकंप नहीं हो सकता। कहा कि जहां राजा युधिष्ठिर के साथ में बातचीत करने से, महाराज युधिष्ठिर का दर्शन करने से नहुष जैसे पापी पवित्र होकर के उत्तम गति को चले। कैसे पापी थे नहुष कि इंद्राणी के ऊपर समझो कि पाप बुद्धि करने वाले, व्यभिचार बुद्धि करने वाले इंद्राणी के ऊपर, दूसरे के स्त्री के ऊपर, और ब्राह्मणों को पालकी के जोड़ करके उस पर चढ़ने वाले, और कैसे पापी कि अगस्त जैसे ऋषि के लात मारने, इतने भारी पापी थे जो घोर नरक के लायक थे और उनको अजगर का समझो कि रूप मिला था, साफ दे दिया था। फिर महाराज विश्व के दर्शन होने से, उनके साथ वार्तालाप करने से, ऐसा पापी भी समझो कि अपने मुहूर्त भर के मां मुक्त होकर के हर उत्तम गति के चला, जब अपने अजगर का शरीर शांत हो गया और उसमें एक ज्योति निकली, ज्योति के रूप से निकला आकाश के हुआ, युधिष्ठिर को उनके दर्शन हुए। युधिष्ठिर ने समझा नहीं युधिष्ठिर ये कौन है, पूछा महाराज आप कौन हो, आप कोई देवता हो या आप कोई इंद्र हो, आप कोई गंधर्व हो, आपको मैं जानना चाहता हूँ, आप कोई स्त्री पुरुष हो। उन्होंने कहा हे राजन मैं नहुष नाम का ऋषि राज ऋषि, राजा होकर के ऋषि हो राज ऋषि, और उसके बल से स्वर्ग के मैं गया, और स्वर्ग के बीच में जितने दुनिया के स्वर्ग में आदमी थे सबसे उसको श्रेष्ठ समझ करके नित्य समझ करके धर्मात्मा समझ करके और ऋषि और देवताओं ने सब ने अपना मालिक बना करके इंद्रासन में बैठा, किंतु पाप के कारण से उसकी दुर्गति हुई। और महाराज युधिष्ठिर के दर्शन से, हे महाराज युधिष्ठिर आपके दर्शन के प्रभाव से आपसे मैंने जो वार्तालाप कर ली इसके प्रभाव से थी मेरे सारे पाप नष्ट। महाभारत के वन पर्व में निकाल कर देखो तो ऐसे ऐसे पुरुष उनका ये प्रभाव, ये विश्व का प्रभाव। इतना ही क्या समझो कि जो महापुरुष जो होते जिस चीज को देख लेते हैं उसमें समझो कि महापुरुषों के भीतर के बीच के वहां जो चीज है वो फैल जाती, उसके सामने यहां तक हमारे शास्त्रों में आता है कि जो महापुरुष जो होते हैं उनके सन्मुख एक गाय आ गई और एक बाघ आ गया,